ओम शांति। हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, हम एक हाथ ताली से आपका स्वागत करते अभिनंदन करते हैं। आप 1986 में ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए और साथ ही साथ आप फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं। दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपने अपने कार्यरत रहे हैं और 1995 में आपने ग्लोबल हॉस्पिटल ज्वाइन किया और साथ ही साथ हेल्थ सोसाइटीज, हेल्थ इंस्टीट्यूट उसके लाइफ मेंबर होने के साथ साथ आप उनके प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्यरत रहते हैं। आपके स्वास्थ्य शैली और मेडिटेशन के क्षेत्र में जो भी कार्य हुए हैं उनको देखते हुए बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने आपको बहुत सारे अवार्ड दिए हैं। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन फिर भी एक दो अवार्ड में आपको बताना चाहूंगी। सीआईबी कैम्ब्रिज ने आपको दो सम्मान दिए हैं, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी एंड दूसरा दिया है इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। ये आपको दो सम्मान मिले हैं, इसके लिए हम बाबा का भी शुक्रिया और आपका भी आभार। दूसरा, मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 1998 में कैड का प्रोग्राम जो चला है उसके ही आप प्रिंसिपल रहे हैं और साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर भी रहे हैं और लाखों आत्माओं के दिलों को आपने राहत पहुंचाई है। उनका दिल दिलाराम कौन है, दिलाराम शिव बाबा के साथ जोड़ करके। और आपका एक पेट स्लोगन है, किसको याद है भाई, सबका एक स्लोगन है जो हर उनके लेक्चर में होता है, याद है किसी को, दिल जोड़ लिया होता अगर यारों के साथ तो ना खुलता औजारों के साथ। तो अपना दिल खोल के ही एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो हम दिल खोल के मुस्कुराते चेहरे से अपना पुष्प देते हुए भाई सबका पुनः स्वागत करते हैं। भाई सब हृदय पुष्प स्वीकार। और अभी भाई सबका विषय है विकर्म पाप कर्म, इनसे बचने की विधि।
ओम शांति। चलिए एक बार हम एक मिनट के लिए अपने मन बुद्धि को इस देह और देह की दुनिया से डिटैच कर लीजिए। मैं अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूं। सभी चले जाओ बस बाबा के पास, उस पावर हाउस से जुड़ जाओ, बुद्धि रूपी तार एकदम उस बाबा से कनेक्ट कर लो। ओम शांति। आज का विषय है एक्चुअली पाप कर्म और विकर्म में अंतर, पाप कर्म और विकर्म में अंतर और पाप कर्म और विक्रम को विनाश करने की विधि या उसका क्या पुरुषार्थ करें। देखिए सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कर्म क्या है। आप क्या समझते हैं कर्म क्या है, क्या है कर्म? जो भी कुछ आत्मा शरीर के द्वारा करती है वो कर्म कहलाता है। आंखों से देखना भी कर्म है, कर्म है नहीं देख कर्म, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, श्वास लेना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना खाना भी कर्म है, पानी पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म, चाय पीना भी कर्म है ना। और हाथों से हम जो कुछ करते हैं वो भी कर्म, चलना फिरना भी कर्म है और हमारा व्यवहार कैसा है लोगों से ये भी कर्म है। और विकर्म क्या कहलाते हैं, विकर्म, विकर्म किसे कहते हैं, विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म कहलाते हैं। विकारों, विकारों या विकारों के जो बाल बच्चे हैं, अंश हैं, अंश और वंश के वश में होकर जो कर्म करते हैं विकर्म कहलाते हैं। और विकर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पाप कर्म, एक होते हैं विक्रम। विक्रम में दो प्रकार होगा ना, एक पाप कर्म और दूसरे विक्रम। पाप कर्म किसे कहते हैं, पाप कर्म बताओ किसे कहते हैं, पाप कर्म करने के लिए दो व्यक्ति कम से कम चाहिए होते हैं, कम से कम दो, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पांच दस भी हो सकते हैं, तो कम से कम दो तो चाहिए। जैसे जो पांच बड़े विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें काम विकार के लिए दो व्यक्ति चाहिए, किसी के तरफ गंदी दृष्टि से देखना वो भी हमको देखे तभी तो काम विकार आएगा। तो इसमें क्या होता है, जब हम काम विकार की भावना पैदा होती है ना तो विचार बहुत तेजी से जलते हैं और उससे हमारी भी एनर्जी जल जाती है। एनर्जी में ना जो आत्मा के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी से ना आत्मिक ऊर्जा है ना आत्मा की, वो जल जाती है, ज्ञान खत्म हो जाता है, आत्म हमारी स्थिति के बजाय देवी हमारी स्थिति के बजाय एकदम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, देवी माना जाता है, स्त्री पुरुष का भान आएगा, है ना, शांत पवित्रता खत्म, शांति खत्म, सच्चा स्नेह खत्म, अतिंद्रिय सुख खत्म, आनंद खत्म और शक्तियां भी खत्म, राइट। तो मेरी भी खत्म हुई और सामने वाले की भी खत्म हो गई, मैं भी जला वो भी जला, राइट, वो आत्मा भी जली ना, उसका भी नुकसान मेरा भी नुकसान, ये पाप कर्म है। सबसे बड़ा पाप कर्म ये है, तो ये जो सबसे बड़ा पाप कर्म है। फिर क्रोध में भी क्या चाहिए, क्रोध अपना आप ही कभी अकेले क्रोध कर सकता है, काम भी करके अकेले नहीं कर सकता, क्रोध भी कोई सामने व्यक्ति चाहिए जिसको क्रोध करे, और क्रोध करे सामने वाला भी क्रोध करेगा। अच्छा क्रोध नहीं करेगा, कम से कम चुप रहेगा, डर के मारे बद्दुआएं तो देगा नहीं, अपनी तो मैंने एनर्जी जलाई कि तो साथ में उसको भी हमने दूसरे सामने वाले व्यक्ति की भी एनर्जी जलाई, इसको बोलते पाप कर्म, राइट। लोभ में मैंने कि लोभ के भी दो व्यक्ति चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं सबका माल हड़प कर लूं, मेरे पास तो अपना है ही वस्तु हड़प कर लूं, पैसा हड़प कर लूं, तो क्या हुआ, ये लोभ हुआ ना, ये भी मैं अपनी एनर्जी तो कवाई, मेरे विचारों की स्पीड तो फास्ट हुई किंतु सामने वाले की विचारों की स्पीड भी फास्ट हुई ना, उसके विचार चलेंगे नहीं चलेंगे, भले वो डर के मारे ना बोले पर न तो चलेगा नहीं चलेगा। ऐसे ही मोह भी पाप कर्म है, मोह माना मैंने किसी के इतना अटैचमेंट पैदा कर लिया उसके ऊपर मैं रह नहीं सकता, मुझे हर समय अपनी आंखों के सामने चाहिए, नहीं, व्यक्तियों का व्यक्ति से मोह होता है, वस्तुओं का लोभ होता है, व्यक्तियों का लोभ होता है, व्यक्तियों का लोभ नहीं होता है, व्यक्तियों का लोभ होता है क्या, व्यक्तियों से मोह होता है और वस्तुओं का वैभव का लोभ होता है, और तो मोह के लिए भी कोई व्यक्ति सामने चाहिए ना, तो मेरी एनर्जी भी कहते हैं मोह का जंजाल, मोह की रग खाली मेरे अंदर नहीं सामने वाले के अंदर पैदा हो जाती है, वो भी बेचारा, इसलिए लास्ट में क्या पेपर रखा है, नष्ट मोह स्मृति लब्ध, ये रखा ना पेपर, सबसे मुश्किल है जाना, और फिर लास्ट उसके आगे कौन सा है, अहंकार, जो हमने लोभ और मोह से इकट्ठा किया ना व्यक्ति और वस्तु, उसका अहंकार हो जाता है। इसमें मैं अहंकार करता हूं तो सामने वाले कभी ईगो हर्ट होती नहीं होती, होती उसका भी दिल जलता है। तो ये पांच विकार, बड़े मोटे मोटे जो विकार है ना पांच, इनके द्वारा जो हमारे अंदर क्या आता है, क्या आता है, पाप कर्म हो जाते हैं। और आपने देखा होगा किसको 30 साल 40 साल भी हो गए अभी तक भी क्रोध आता है, नहीं, इच्छाएं तो पैदा होती हैं, लगाव झुकाव प्रभाव, जो काम विकार नहीं है, कामनाएं तो पैदा होती हैं, नहीं होती, लोभ भी आता है, मोह भी आता है, अहंकार भी होता है, वो जले नहीं अभी तक, खत्म नहीं हुए, कैसे उसको विनाश करेंगे। अब आता है विक्रम, विक्रम क्या होता है, अकेला आदमी करता है, राइट। और ये विक्रम ऐसे हैं जैसे कि जो पापक्रम होते ना, सूखी लकड़ी होती ना, आग लगाई जल गई पूरी राख बन गई, पूरी खत्म हो गई, पूरी खत्म हो गई। और विक्रम कैसे होते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें गीली लकड़ी होती ना, गीली लकड़ी हो उसको मिट्टी का तेल भी डाल के आग लगाओ तो क्या होगा, उससे धुआं निकलता रहेगा और वो तो जल के खत्म हो, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, वो क्या करेगी, जलती रहेगी और धुआं निकलता रहेगा और आपकी आंखों को तंग करता रहेगा और आस पड़ोस को तंग करता रहेगा, और उसके लकड़ी किसी काम की नहीं, उसे फर्नीचर बना सकते फिर कुछ भी, किसी काम की लकड़ी नहीं। तो ये जो है विक्रम क्या करते हैं, हमको थका देते हैं। अब विक्रम किसे कहते हैं, देखो जब जब हम काम विकार में, काम पांचों विकार किससे, देहाभिमान से पैदा होते हैं, देहाभिमान, देहाभिमान के संबंध संपर्क, देवमान के पदार्थ और देवमान से पैदा होने वाले पांच आसुरी स्वभाव कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? पांच आसुरी स्वभाव, असुरों का स्वभाव है। इनको एनिमल इंस्टिंक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये पशु की वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये इंसान की वृत्ति नहीं है। इंसान की वृत्ति तो इस योग से संतान उत्पत्ति करना, बिना प्यार से स्नेह से एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे गुण देखना, यही तो हमारी वृत्ति है ना। जितना जरूरी है बल्कि दूसरों की मदद करना, अपने से मैं दूसरों की मदद करना, दान करना, इंसान की वृत्ति तो ये होनी चाहिए। नहीं, मोह नहीं, सब फ्री है। अहंकार नहीं, कहते ना जरा भी किसी बात का अहंकार नहीं। मनुष्य की ये जो है इंसान की वृत्ति होती है। ये जानवरों की वृत्ति है, कुत्ता बिल्ली शेर बंदर ना, उनकी वृत्तियां होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में होकर कर्म करते हैं ना, तो उससे हमारी सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जा जल जाती हैं। और उनके जलने से फिर हमारे अंदर क्या होता है, काम विकार से क्या पैदा होता है, हमारे अंदर आलस्य और अलबेलापन पैदा होता है, लेजीनेस और केयरलेसनेस पैदा होती है। हम आलसी, हमें टाइम पे सोते नहीं, टाइम पे उठते नहीं, है ना, बस आलस, देर से सोएंगे देर से उठेंगे, और केयरलेस अलबेलापन आ जाता है, हम केयरलेस हो जाते हैं, हम किसी बात पे फोकस नहीं कर पाते। ये आलस और अलबेलेपन के वश में जो कर्म किए ना, ये एक पाप कर्म कहलाया, ये सॉरी विकर्म कहलाता है। मैंने एक आलस किया, आपका नुकसान किया क्या? मैंने असल अपना नुकसान किया ना, मैंने अमृत वेला मिस कर दिया, मुरली मिस कर दी, तो क्या किया, नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ, आपका हुआ, मेरा हुआ ना। इसमें मैंने अपनी एनर्जी जलाई ना, तो आलस्य अलबेलापन, रात को नींद, फिर दिन में नींद आएगी, दिन में भी अलर्ट नहीं रहेंगे। क्रोध से क्या, क्रोध के भी दो बच्चे हैं, दो आदतें, ये आदत बन जाती है, ये आदत बन जाती है, सूखी गीली लकड़ी की तरह जलते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे, राइट, समझ रहे हैं? फिर क्रोध के भी दो, उससे भी दो संस्कार बनते हैं। जब क्रोध के वशों को कर्म करेंगे ना, तो हमारे दो बात पैदा होती है। जब अपने को आत्मा समझ के हम व्यवहार करते हैं, तो हमारे अंदर हम हंस के माफिक हमारी दृष्टि वृद्धि होती है। आत्मा वैसे अपने आप में क्या है, अलर्ट और एक्यूरेट है। सो रहे तो भी हार्ट काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, सब बॉडी काम कर रही है ना, पूरा सब सिस्टम काम कर रहा है, सफाई हो रही है। किंतु जब आलस और बेलापन आया, तो मतलब ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा संस्कार नहीं है, आलस से अलबेलेपन का संस्कार पड़ गया। क्रोध से क्या है, जब हम अपने को आत्मा समझ के व्यवहार करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर हम सबके गुण देखते हैं। हंस क्या करता है, हंस के सामने हजारों मोती पड़े हों, हजारों कंकड़ पड़े हों, जो दो मोती पड़े हों, क्या दिखाई देता है उसको, उसे मोती कंकड़ देने नहीं आते, हजारों कंकड़ से मोती सिर्फ दो ही हैं, तो उसको दो ही मोती दिखाई देंगे। और एक बगला होता है, बगले की क्या नेचर होती है, उसके सामने हजारों मोती पड़े हैं, किंतु क्या है? हजारों मोती पड़े हों, बीच में दो कीड़े पड़े हों, उसको मोती नजर आते हैं क्या, कीड़े दिखाई देते हैं। तो हमें देखना है कि हाँ जी, क्या कह रहे हैं, हाँ वही कीड़े, उनको ही खाएंगे ना। तो ये हमारा स्वभाव बन जाता है, ये हमारी संस्कार आदत बन जाती है, राइट। आगे आ जाओ, आगे यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, वो हमारे संस्कार बन जाता है, आदत पड़ जाती है ना। तो दोष दर्शन बदला, दोष दर्शन करने की आदत पड़ जाती है। आज घरों में कलेश क्यों हो रहा है, माता पिता बच्चे, माँ बाप को बच्चों में दोष नजर आता है, और बच्चों में, बच्चों को माँ बाप में, और माँ को पति को पत्नी में, पत्नी को पति में, नहीं। 98 गुण है कि पहले शादी से पहले क्या होता है, मतलब एक लड़का और लड़की है और एक कॉलेज में पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, उनका आपस में प्यार हो गया, सो कॉल्ड प्यार होता है आजकल जैसे कहते ना, तो वो पर माँ बाप उसकी शादी करना नहीं चाहते। तो लड़का कहता है, मैं अपनी माँ को बोलता है, पिताजी को, उस लड़की में बहुत सारे गुण है, उसकी लड़की दूसरे धरती पे है नहीं, मैं करूंगा शादी उससे। लड़की भी क्या कहती है, उस लड़के में इतने गुण है कि मैं उससे शादी करूंगी तो कुंवारी रहूंगी। अब माँ बाप शादी कर दो उसकी, चलो दोनों की मान लेते हैं, शादी कर दी। अभी क्या हुआ, शादी के 3 महीने बाद पूछो कि अभी क्या हाल है, क्या कहेंगे? अब वो लड़की बोले कि इसके अंदर तो इतनी खराबी है, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं इसके साथ रह नहीं सकती। लड़का भी कहेगा ना ये कि मैं तो इसके, मुझे पता ही नहीं था इसमें इतनी खराबी है। वही लड़की है, वही लड़का, कैसे बदल गए बताओ? क्योंकि पहले हंस थे, हंसों का जोड़ा था, अभी क्या बन गए? क्योंकि अब रोल कॉन्शियस हो गए ना, बॉडी कॉन्शियस हो गए, विकार आ गया, तो क्या हो गया, अभी बगले बन गए। पहले भी इसमें 98 गुण थे, अभी भी दोनों में 98 गुण थे, दो गुण जो थे ना 98 गुण ही दिखाई देते थे, अब गुण नजर नहीं आते थे। अभी क्या हो, जैसे रोल कॉन्शियस बनते हैं, बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, पति पत्नी का भाव आया, तो अब क्या है, वो दो अवगुण वही बड़े दिखाई देते हैं, बाकी गुण छिप जाते हैं। इसलिए घरों में झगड़ा है, बच्चों को मां बाप में, मां बाप को बच्चों में, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉइज में, क्या हो रहा है, दोष दर्शन की आदत पड़ गई। कलयुग का मतलब ही ये बन रहा है, कलेश, हर समय कलेश, हर जगह कलेश, हर संबंध में कलेश, दोष दर्शन, कोई दूसरे को पसंद ही नहीं करता है, दूर से सब अच्छा लगता है, दूर के ढोल सुहावने कहते हैं ना, पास में जाने के ढोल कान फटने लगते हैं ना, नहीं होते, नहीं होते। तो ये जो है, हमें दोष दर्शन की आदत पड़ जाती है, और जो क्रोध से आदत पड़ती है ये, और वैसे हमारी नेचर क्या होती है, कोई गलती करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, तो हम इसको देख के क्या आएगा, रहम आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, वो मेरे ऊपर ही क्रोध कर रहा है, हाँ क्या आना चाहिए, रहम आना चाहिए। क्रोध करना कैसे है, जैसे कोई आदमी अपने ऊपर आग डाल को डाल के तेल डाल के जलाए अपने आप को, तो क्या आएगा, अच्छा उसको देख के मैं भी अपने ऊपर तेल डाल के अपने आप को आग लगा लूं, अच्छी बात है ना, यही तो हम करते हैं। किसी ने मुझे क्रोध किया, मैंने भी उसको क्रोध कर दिया, क्या हुआ, वो तो जल रहा था, हमने भी जला दिया अपने आप को, दोनों जल के राख हो गए, नहीं क्या क्या अच्छा हुआ क्या, नहीं, रहम आना चाहिए। जब समझ गए मैं, एक बाप के बच्चे आपस में आत्मा भाई भाई हैं या भाई बहन है, तो मेरा भाई मेरी बहन ऐसे कर रही है तो क्या होगा, रहम आएगा ना, नहीं, या क्रोध आएगा, क्रोध नहीं आना चाहिए। तो ये जो है ना, दोष दर्शन और बदलने की भावना, जब बदलने की भावना से मेरे अंदर, आपने मेरे साथ गलत किया था कभी, मेरे अंदर बदलने की भावना भरी हुई है, मैं इसको माफ रहम नहीं आता उसके ऊपर, बेचारा दुखी है, बेचारी बहुत दुखी है, क्यों मैं इसको ऐसा करूं, नहीं, गुस्सा आता है। और उसने तो, उसको कुछ नुकसान नहीं हो रहा, उसने तो एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, कि तो मैं जल रहा हूं, दिन रात जल रहा हूं, मतलब उनकी भावना में जल रहा है, हॉस्टाइल बिहेवियर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। और दोष दर्शन, मेरे को नहीं पता मैं उनके अंदर अवगुण देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं अपने आप देख देख के, नहीं तो नुकसान किसका हो रहा है, मेरा। ये विक्रम है, इंसान की नेचर कैसी है, हमारा जीवन किस आधार पर चलता है, निश्चय और विश्वास पर चलता है ना। परिवार कैसे बनते हैं, निश्चय है, माँ बाप को अपने बच्चों पर निश्चय है, बच्चों को माँ बाप पर निश्चय है, पति को पत्नी पर निश्चय है, पत्नी को पति पर निश्चय है, नहीं समाज में कैसे है, दूसरे पर निश्चय है ना, कार्य करते तो निश्चय है, तभी तो हम कर्म करते हैं, नहीं विश्वास भी होता है कि, तो जैसे ही हमारे अंदर लोभ आता है ना, तो क्या होता है, भाई भाई में भी क्या हो जाता है, संशय हो जाता है ना, स्वयं पे संशय हो जाता है, दूसरे पे भी संशय, और भगवान पे भी संशय, और परिवार पे भी संशय हो जाता, नहीं हो जाता, शक हो जाता है, और विश्वास के भी अनुमान लगाने लगते हैं, एज्यूम करने लगते हैं, उसने ऐसा किया होगा, ये ऐसा वो ही कर सकता है, नहीं तो शक और अनुमान शुरू हो जाता है। ये भी शक और अनुमान के वश जो कार्य करते हैं ना, आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है लोभ की वजह से, इसे लोगों को स्किजोफ्रेनिया हो रहा है। शक और अनुमान की नेचर कैसे होती है, इसको बोलते हैं स्किजोइड नेचर, क्या बोलते हैं इसको, स्किजोइड नेचर। ये प्रैक्टिस करते करते हमारा स्किजोफ्रेनिया, जैसे स्किजोफ्रेनिया माने, जब देखते ना सुनते ना, आजकल बच्चों को स्किजोफ्रेनिया हो जाता है, दिखाई कुछ अपने 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 विचार दिखाई देने लगते हैं, अपने विचार सुनाई देने लगते हैं, नहीं हालूसिनेशंस कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये भी क्या है, कितना फालतू सोचते रहते हैं, सोचते रहेंगे और गलत कर भी देंगे। तो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म से विकर्म होते हैं, राइट। और मोह से क्या पैदा होता है, मोह से कौन सी आदत पड़ती है, मोह के वश कर्म करोगे क्या होगा, चिंता और भय पैदा होता है। क्या पैदा होता है, चिंता और भय पैदा होती है, चिंता की आदत पड़ जाती है। शक अनुमान की आदत पड़ी ना, चिंता भय की, चिंता की आदत पड़ गई, डर की आदत पड़ गई, नहीं। तो इससे भी क्या हो रहा है, मैं चिंता कर रहा हूं अंदर अंदर, डर रहा हूं, किसका नुकसान हो रहा है, ये विक्रम है। क्या है ये विक्रम है, पाप में दुख नहीं दे रहा किसी को, पर मैं चिंता में मरे जा रहा हूं, अपने आप को जलाए जा रहा हूं, डर में मरे जा रहा हूं, नुकसान किसका है, मेरा ही, आपका, मेरा ही होना है। इसी तरह से जो अहंकार होता है ना, अपने को आत्मा मानी स्थिति में रहते हैं, देही मानी स्थिति में रहते हैं, तो उसमें तो हमारे अंदर क्या होता है, धीरेता रहती है, हर काम में आराम से काम करो, पता है कि हर काम धीरे धीरे ही होता है, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होता है, होता है जल्दबाजी में कुछ, पेड़ लगाओ धीरे धीरे अंकुरित होगा, फिर अंकुर डाल, पेड़ बीज डाला, फिर अंकुर धीरे अंकुरित होगा, दो दो पत्ते निकलेंगे, फिर धीरे बड़ा हुआ, ऐसे तो निकाल निकाल के देखता हूँ अंकुरित हुआ नहीं हुआ, अभी डाला फिर देखो, थोड़ी देर में देखूंगा निकाल के, नहीं ऐसा होता है क्या। किंतु जो अहंकार वाला व्यक्ति होता है, अभिमान वाला व्यक्ति होता है, उसको ईगो होती ना, वो हर चीज कहता है मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, उसे हमेशा टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, कंपटीशन कंपैरिजन, इसको कहते हैं टाइप ए बिहेवियर, अंग्रेजी में कहते हैं हरी सिकनेस, जल्दबाजी, हर बात में जल्दीबाजी है ना, आज लोगों में जल्दबाजी, ये एक आदत पड़ जाती है। ये तो आदमी की नेचर है धैर्यता की, क्या नेचर है, पेशेंस, हर बात में पेशेंस रखने से कभी पेशेंट नहीं बनते, राइट। तो आत्मा की नेचर क्या है, मोह ना हो तो हम बेफिक्र बादशाह हैं, नहीं, वो निर्भय है। आत्मा कभी मरती है क्या, डरने की बात ही नहीं है, आत्मा कभी बीमार होती है, कभी बीमार नहीं होती है, तो आत्मा को डर है ही नहीं, आत्मा बेफिक्र है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, नहीं बजा रही। अहंकार के फिर क्या हुआ, जल्दबाजी हर बात में, दूसरा ईर्ष्या द्वेष, अहंकार होता ना उसको हमेशा दूसरे से, मेरे से आगे नहीं चला जाए, गिराएंगे दूसरे को, आगे नहीं बढ़ने देंगे, ईर्ष्या द्वेष होगी नहीं होगी। तो ये 10 बातें होगी ना, इनके फिर आगे 10-10 और भी हैं, पूरा पूरा परिवार है, बड़ा परिवार है ना, कौरव को सौ कहते हैं, 100 कौरव कहते हैं ना, तो इनके कारण जो विचार चलते हैं ना, जो आदतें पड़ जाती हैं, इसको बोलते विकर्म। तो विकर्मों खाता ही बहुत बड़ा है, और जो विकर्म करता है इनके वश में रहता हो जाता है, आलस से, अलवेलेपन के वश में, शक अनुमान, दोष दर्शन बदलने की भावना के वश में, शक अनुमान के वश में, चिंता भय के वश में, और जल्दबाजी करता है और ईर्ष्या द्वेष करता है, वो आदमी सूखी लकड़ी, ये लकड़ी की तरह हमेशा दिन रात जलता रहता, और काम किसी काम का रहता नहीं, ना अपने काम का ना दूसरे काम का, होता नहीं होता। तो विक्रम है ये, राइट, यस और नो। अब हम क्या करें, कितने कितने किए होंगे हमने विक्रम अभी तक, कितने किए होंगे, ये सामने पहाड़ में दिखाई देते ना, पहाड़ ना, माउंट आबू, कितने विक्रम तो किए होंगे, नहीं, कितने पाप कर्म, कितने एक ही जन्म में कितने पाप कर्म कर लेते हैं, और बाबा का बनने के बाद कितने पाप कर्म किए होंगे, जितने भी किए उसका सोगना हो गया, नहीं, देवाभिमान के वश, देवान तो क्या, सत्युग में भी थोड़ा सा तो होता है, सतो प्रधान देवान होता है, सतो देवान होता है, पर द्वापर में जैसे ही रजो देवान शुरू होता है तो देवाभिमान आ जाता है, सत्युग में देवाभिमान नहीं होता, फिर मेल फीमेल का भान आता है, तब वहां मेल गुणों का दर्शन होता है, गुणों में व्यवहार होता है सत्युग में, राइट, रहम दिल होते हैं आपस में, निश्चय विश्वास होता है, और क्या होता है, बेफिक्र रहते हैं सभी, और निर्भय रहते हैं, और धैर्यता होती है हर काम में, और ईर्ष्या-द्वेष ने विश्व कल्याण करे, सबका कल्याण हो। तो जैसे ही हमारे अंदर ये आते तब हमारे अंदर विकार आने शुरू होते हैं, तब हमारे अंदर विकार, पहले विकार आते हैं, और फिर जब विकार में बीमारियां नहीं आती शुरू में, जब हमारी आदत बन जाती है ना करने की दिन रात, जब हमारी आदत बन जाती है धीरे धीरे, संस्कार बन जाते हैं आलस के, अलबेलेपन के, दोष दर्शन बदलने की भावना, तो बीमारी आनी शुरू होती है। शुरू शुरू में से राजाओं में बीमारियां आती हैं, इसे राज वैद्य होते थे, पब्लिक में वैद्य नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे जब पब्लिक में बीमारी आनी शुरू होती है तो फिर वैद्य गली गली में वैद्य। आज तो क्या हालत है, गली गली में हॉस्पिटल, गली गली में डॉक्टर है ना, नहीं नहीं है सर। फिर भी बीमारियां बढ़ रही हैं, रोगी बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर ही बेचारे बीमार हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इजंट इट। तो अब हम इसको क्या करें, कैसे विनाश करें। आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में, क्या कहा शिव बाबा, कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे तुम सतो प्रधान बन जाए, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा ज्ञान, इससे ज्ञान से क्या होता है, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या है, इस जीवन में रहते मुक्ति किसे कहते हैं, 63 जन्मों के पाप कर्म से हम मुक्त महसूस करें, उस कहते हैं मुक्ति। अगर मैं बाप से कंबाइंड हो जाऊं, निरंतर कंबाइंड रहना सीख जाऊं, तो मेरे को कोई भी पाप कर्म सताएगा नहीं, राइट। तो मुझे भले 63 जन्म के पाप कर्म है कि तो ऐसे खत्म होते जाएंगे, रिटर्न जर्नी फील ही नहीं होगी, बाबा की गोदी में बैठा बाबा अपने आप लेके जा रहा है, ऐसा फील होता। अगर बाबा से कंबाइंड हूं तो, और फिर जीवन मुक्ति माना क्या, संगम पे जीवन मुक्त की स्थिति क्या है। अगर मेरे अंदर 36 दैवी गुण धारण होते जा रहे हैं, अवगुण खत्म हो गए, आते ही नहीं, अंधेरा आता ही नहीं, दैवी गुण आ गए, धैर्यता आ गई, गंभीर सत्यता आ गई, पवित्रता निर्भयता आ गई, सभ्यता ब्राह्मणों की सभ्यता मैंने अडॉप्ट कर ली, अंतर्मुखी बन गया, भेद की वैराग्य वृत्ति हो गई, अनासक्त वृत्ति, कुछ देखने की इच्छा नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं, जो मिला खा लिया, जैसे किया बस बाबा की याद में खा लिया, बाबा की याद में कर, अनासक्त, कोई देखने की इच्छा नहीं, कुछ भी वो जाके देखूं, उधर जाऊं उधर जाऊं, उपराम वृत्ति, उपराम मनोबुद्धि उपराम हो गए, एकांतवासी थी ना कल की मुरली, एकाग्रता अंतर्मुखता था, 4 तारीख की मुरली थी अंतर्मुखता के ऊपर। तो मतलब बाबा की बस सारा टाइम इसमें जी रहा हूं, सरलता नम्रता उदारता मधुरता जीवन बन गया, संतुष्टता जीवन बन गया, अर्षित मुक्ता जीवन बन गया, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बस आर्टिफिशियल नहीं मुस्कुराते, अंदर की नेचुरल मुस्कान रहती है, नहीं रहती है? कभी देवता किसी का मूड ऑफ देखा आपने, कभी किसी देवता का, किसी देवी का मूड ऑफ, शेरावाली माता का मुंह ऐसे बना के बैठी हो, देखिए कभी वैष्णो देवी ऐसी बैठी है, आज मूड ऑफ है वैष्णो देवी का, ऐसे सुना सुना नहीं सुना ना कभी नहीं सुना, तो उनका कभी नहीं, हमारा मूड ऑफ क्यों होता है, समझने की बात है ना। तो ये हमें देखना है कि हमारे तो विधि क्या है। देखो इसकी विधि जो बाबा ने, आप सब जानते हो कि विक्रम विनाश करने की, पाप कर्म भस्म करने की विधि क्या है, मनमनाभाव। क्या है, मनमनाभाव मंत्र है ना, मनमनाभाव, मनमनाभाव मंत्र है। और इसका यंत्र कौन सा है, मनमनाभाव कैसे बनेंगे हम, सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि, किससे कैसे होगा, यंत्र किससे पैदा हुआ, मनमनाभ को होंगे सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि होगी, तो मनमनाभ होंगे तो मध्याजी हो जाएंगे, मध्याजी मतलब फरिश्ता बन जाएंगे, राइट। और वो मनमनाभ होते नहीं है, मुरली दोस्त मुरली आज की सुनी तो साधन मुरली अंदर से बज रही है क्या, सुबह से बाबा ने आज क्या कहा, आज का वरदान क्या था, आज का स्लोगन क्या था, आज का व्यक्ति इशारा क्या था, आज दादी ने क्या हमको इशारा दिया, बज रहा है अंदर से, बार बार अटेंशन जा रहा है कि आज दादी ने ऐसा कहा, ऐसा याद आ रहा है बार बार, मुझे ऐसा बनना है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, और बातें याद आ रही है कि तो वो बातें कम याद आ रही है, अटेंशन देना पड़ रहा है, कोई सुनाता तो हाँ यही तो कहा था बाबा ने, यही तो कहा था, नहीं यही तो कहा था, कितनी अच्छी सुनते से मैं बहुत मुरली अच्छी लगती है, और बाद में देखो तो बाहर निकलते निकलते भूल जाती है, स्लोगन भी भूल जाता है, वरदान भी भूल जाता है, सब भूल जाता है, और दुनिया की बातें नहीं भूलती हैं, किसी ने थोड़ा सा कुछ गलत बोला होगा, सारी रात भी याद किया होगा, और दिन में भी उठते ही वो बाबा का मुरली अपनी तरह एक तरफ रह गई और आप शुरू हो गए। तो सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि, शिव बाबा क्या बोलते हैं, सच्चित आनंद स्वरूप, उसकी बुद्धि भी मन भी संस्कार भी तीनों सच्चित आनंद स्वरूप है, राइट। देवताओं का भी बुद्धि भी मन भी संस्कार भी क्या है, सच्चित आनंद स्वरूप है। क्यों तो ब्राह्मणों को क्या बनानी है अपनी बुद्धि, सच्चित आनंद स्वरूप बनानी है। बुद्धि ये बन जाएगी तो हम मनमनाभाव हो जाएंगे, और मनमनाभाव बन जाएंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, राइट। और फरिश्ता बन जाएंगे तो देवता भी बन जाएंगे, राइट। नहीं तो अब देखते हैं कैसे हम, अब जो मनुष्य है, मनुष्य की बुद्धि में क्या है, मन में क्या है, संस्कारों में क्या है, यही देहभान, देहाभिमान, देवीमान के संबंध संपर्क, देवीमान के पदार्थ और देवीमान से पैदा होने वाले पांच आसुरी स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उनके वश होकर कर्म करने से क्या पैदा हुआ हमारे अंदर, 10 आसुरी संस्कार पैदा हुए, आदतें बन गई। हम चाहें तो भी कंट्रोल नहीं कर पाते। आदत किसे कहते हैं, कोई स्मोकिंग करना शुरू कर देता है, चाहता है छोड़ दूं, पता है नुकसान है, फिर भी कंट्रोल होता नहीं, फिर भी बार बार पी लेते। चाय पीने की आदत पड़ गई, चाय पी के गाड़ी चलती है ना, तो चाहते छोड़ देना, पता है कैसे एसिडिटी बनेगी, हड्डियां खराब होंगी, नहीं होता, तो फिर भी पी रहे हैं क्योंकि शरीर नहीं चलता, आदत बन गई ना खाने, तो संस्कार आदत बन जाती है। तो आलस्य, अलबेलापन, दोष दर्शन, बदलने की भावना, शक अनुमान, चिंता भय और जल्दीबाजी और ईर्ष्या द्वेष, 10 बातें हो गई ना, तो ये आदत बन गई है। पांच विकारक वश किए कर्म क्या कहलाते हैं, पांच विकारक वश किए कर्म पाप कर्म कहलाते हैं, और इन 10 के वश किए कर्म क्या कहलाते हैं, विकर्म कहलाते हैं। देह अभिमान के वश किए कर्म भी विकर्म कहलाते हैं, देव संबंध संपर्क में आके कर्म किए वो भी विकर्म कहलाते हैं, पदार्थों के वशों के कर्म किए वो भी विकर्म कहलाते हैं, ठीक है। तो ये विकर्म और पाप कर्म आ गए। अब शिव बाबा क्या करता है, जब सूक्ष्म, जब शिव बाबा परमधाम से आते हैं तो सूक्ष्म वतन क्या चीज है बताओ, एनीवन, हां जी, यहां पर देवी देवता रहते हैं, देवती देवता स्वर्ग में रहते हैं। देखो आत्मा के पास 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जा है ना, तो एक तो ये हार्ट तो शरीर का दिल हार्ट है, दिल इसको इसको तो ये तो शरीर का है ना, आत्मा का दिल कौन सा होता है, आत्मा का दिल कौन सा होता है, मन नहीं होता ना, ना बुद्धि भी नहीं होता। देख आपने देखा शूटिंग बोर्ड होता है ना, शूटिंग बोर्ड पे क्या होता है, एक बीच में बिंदु होता है और बिंदु के आसपास एक गोला होता है, फिर दूसरा गोला, फिर तीसरा, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, जो पहला सर्कल ना वो दिल है, राइट। जो आत्मा है, जैसे ये बल्ब है ना, सबसे ज्यादा लाइट कहां पर है, बल्ब के पास, जितना दूर जाएंगे लाइट कम होती जाएगी। तो आत्मा के यहां पर जो सीट है ना, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस यहां है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, उसके पीछे पीनियल ग्लैंड है, नींद की ग्लैंड है, नींद का हार्मोन निकलता है। तो वो जो ग्लैंड है वहां आत्मा की सीट है। तो आत्मा की सीट ऐसी जगह है जहां पर 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जा निकलती रहती है, हमेशा निकलती रहती है, जैसे बल्ब से लाइट और गर्मी निकलती है ना, ऐसे वो एनर्जी उससे हमेशा निकल रही है। और वो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सच्चा स्नेह, आज था ना मुरली में सत्य सच्चा और निस्वार्थ स्नेह था ना, व्यक्ति चारे में था ना, तो इस स्नेह की हम भूखे हैं। सभी आत्मा किसकी भूखी है, ये माता जी कहां गई, कहां जाके आए माता जी, सीधे होके बैठ। कई बार हम घूमने निकल जाते ना कहीं कहीं, तो ऐसा भी होता है, शरीर से यहां आके तो मन बुद्धि से कहीं और चले जाते हैं। सुने आपने, तो सच्चा स्नेह, तो ये जो है ज्ञान, पवित्रता, शांति, सच्चा स्नेह, सच्चा और निस्वार्थ स्नेह, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां आत्मा के साथ में एनर्जी, तो सबसे ज्यादा कहां होंगे, जहां आत्मा की सीट है। और वहां ऐसी सेल्स होती हैं जो तुरंत उसको स्पिरिचुअल एनर्जी को मेंटल एनर्जी में बदल देती है। मेंटल एनर्जी माना मानसिक ऊर्जा, माना संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, अंग्रेजी में कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो वो जब मान लीजिए ज्ञान की एनर्जी है तो क्या होगा, ज्ञान के विचार चलेंगे, ज्ञान की भावनाएं पैदा होंगी, राइट, ज्ञान की वृत्ति बन जाएगी, मतलब रूहानी वृत्ति बन जाएगी और रूहानी दृष्टि बन जाएगी, रूहानी वायुमंडल बन जाएगा, राइट। और क्या होगा, रूहानी स्मृतियां जागृत हो जाएंगी। मैं आत्मा हूं, ये भी तो आत्मा है, हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई, ये वृत्ति जागृत होगी नहीं होगी, स्मृति जागृत हो जाएंगी। तो ये और उसके द्वारा एनर्जी क्या जाती है, वो हर विचार हर भावना फिर यहां केमिकल बनता है उसका, वो केमिकल वो खून की तरह सारी सेल्स पे पहुंच जाता है, फिर उसके अनुसार वो काम करती है। ऐसे पवित्रता की एनर्जी है, वो कैसे पवित्रता के विचार भावनाएं वृत्ति स्मृति में बदल जाएंगे। शांति की एनर्जी है, वो क्या होगी, शांति के विचार, शांति की भावना, शांति की वृत्ति दृष्टि, स्नेह की एनर्जी से क्या होगा, स्नेह के विचार, स्नेह की क्या होगी भावना, स्नेह की वृत्ति, स्नेह की दृष्टि और स्नेह के वायुमंडल और स्नेह की स्मृतियां जागृत हो जाएंगे। ऐसे अतिंद्रिय सुख की, ऐसे आनंद की, तो एनर्जी जाके वो सेल्स कुछ क्या चाहिए, आत्मा कैसे चले शरीर को, इन सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के आधार पर चला रही, राइट। अब क्या हो गया आत्मा के पास, वो मन दिल ना थोड़ा सा ज्ञान है, मनुष्यों में तो है ही नहीं ज्ञान, अज्ञान ही अज्ञान है, अज्ञान है ज्ञान है, वो समझते नहीं हम आत्मा है, परमात्मा के संतान समझते ही नहीं, वो तो देह के संबंध को समझते हैं सब कुछ, पदार्थों को सब कुछ समझते हैं। तो आत्मा मनुष्यों के पास क्या है, दिल उनका कैसा है, दिल में उनके अज्ञान भरा हुआ है, पवित्रता नहीं अपवित्रता भरी है, शांति की बजाय अशांति भरी हुई है, प्रेम नहीं क्या भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, समझ रहे ना, तो वो उनमें स्नेह नहीं है, उनमें क्या है, अतिंद्रिय सुख नहीं है, इंद्रियों का सुख है, ये इंद्रियों का सुख, देखने का सुख, पढ़ने का सुख, मेरे को पसंद है नावल पसंद है ना, पढ़ने का सुख मिला नहीं मिल रहा, किसी कुछ पढ़ना पसंद है, किसी कुछ पढ़ना पसंद है, सुनने का सुख, सूंघने का सुख, फूल सूंघने का या कोई और खुशबू सूंघने का, सेंट लगाते ना आजकल नहीं, ये क्या करता है, बोलने का सुख, खाने का सुख, पीने का सुख, छूने का सुख, ये क्या है, ये सब बीमारी पैदा करता है, सारे बीमारी का कारण यही है, इंद्रियों के सुख, अल्प काल के सुख काग निष्ठा के समान, कौवे की उल्टी होती ना, कौवे की उल्टी कैसी चमकती है धूप में, मोती जैसे चमकती है, तो लगेगा उठा लो, पर उठाओगे तो क्या होगा, ऐसे ही लोग शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं बड़ी बड़ी, क्या होता है उससे, सुख मिलता है, अल्पकाल का सुख कैसा, कौवे के उल्टे के समान, नहीं लगता, नहीं लगता, महसूस होता है, सुख मिला दुख मिला, थोड़ी देर तो सुख मिला, अल्पकाल का सुख मिला किंतु फिर दुखी दुख, फिर सारी उम्र भोगते रहो, नहीं होता, नहीं होता। तो ये जो है, तो आज जब शिव बाबा आते हैं तो दिल माना जहां पर आत्मा की सबसे ज्यादा एनर्जी है, फिर दूर जाएंगे उससे, उस आत्मा की एनर्जी के आधार पर क्या होता है, हमारी अगर दिल में सत्य है तो हमारा चित्त कैसा हो, हमारा जो है सत्य को प्रतिनिधि जागृत होती है, हजारों असत्य के बीच में एक सत्य क्या है, अंदर मेरे दिमाग में क्या भरा हुआ है, सेल्स में क्या भरा हुआ है, बचपन से जो कुछ देखा है सुना है किया है वो सब भरा हुआ है ना, अंदर नहीं भरा हुआ, रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग सारी सारी कैसे भरी हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव भरी हुई है, तो माया कहां पर है, माया कहां है बताओ, 90% तो मेरे अंदर है, 10% ही बाहर है, नहीं 90% माया कहां है, विकार कहां है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहां पे है, आलस्य अलबेलापन कहां है, दोष दर्शन कहां है, बदलने की भावना कहां है, मेरे अंदर ही है। और ये जो हमें समझ लेना है कि जो शिव बाबा जब आते हैं, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त, अभी तो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा है, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा जैसे मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं तो क्या होता है, जैसे एक बच्चा होता है छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, उसके दिल में क्या आ जाता है, सबसे पहले माँ को देखता है ना, माँ उसे बहुत प्यार से देखती है, ऐसा कोई नहीं देखता, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है ना, इतने प्यार से देखती है तो माँ उसके दिल में छप जाती है, दिल में ना चेतना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, अंतरात्मा भी कहते हैं, चेतना भी कहते हैं, चेतन मीन्स मुझे अब यही अटेंशन, एक ही चेतनता है, एक ही मुझे पता है कॉन्शियसनेस में कि मैं इसका बच्चा हूं, राइट। उसे माँ ही सब दिखाई देती है, चारों तरफ माँ ही दिखाई देती है, क्योंकि माँ ही सबसे पहले भाग के आती है, नहीं कुछ भी होगा तो कौन देखता है, उसको किचन में खाना बना रही है माँ, पिताजी भी बैठे हैं, भाई भी बैठा है, बच्चा कमरे में लेटा हुआ है बेड पे, उसको यूरिन कर लेता है या कुछ उसको तकलीफ होती है, तो ना बाप को पता रहता, ना भाई को पता, ना बहन को पता लगता, किसको पता लगता है? आवाज भी नहीं आ रही है, पर मां को वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं और तुरंत भाग के जाएगी, नहीं जाएगी? तो मां को हर समय देखता है ना, तो मां उसके दिल में समा जाती है, राइट? उसलिए दिल से मां को बुलाता है। सबसे पहले शब्द कौन सा बोलता है बच्चा? मां बोलता है या बाप बोलता है, पापा बोलता है? पहले मां ही बोलता है ना, नहीं? पहला शब्द ही मां आता है, क्योंकि मां जितना उसके लिए प्यार, जितनी केयर है ना उसकी, तो मां जैसे कोई कितने, हे मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी ना, नहीं ऐसा ना गीता? तो हर एक बच्चे के लिए ये फीलिंग है, नहीं? तो जैसे ऐसे ही जब शिव बाबा हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म देता है, जैसे बच्चे के दिल में उसकी मां आ जाती है, चेतना में मां आ जाती है, ऐसे ही हमारे दिल में क्या होता है? और जब चेतना में मां आती है तो बाद में उसका बाप सबसे ज्यादा प्यार से उसको देखता है। जो बाप जिस नजर से देखता है ना, मेरा मेरा लाल है, मेरा लाडला है, मेरी लाडली है ना, कोई दूसरा नहीं देखता है, दूसरा कोई नहीं देखता उसको अपनी गोदी में रख के प्यार से जैसे देखता है, कोई दूसरा नहीं देखता है। दादी भी नहीं देखती है, दादा भी नहीं देखता है, कोई देखता है? वो ही देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनकी अपनी क्रिएशन है ना, तो वो जो है उसको बहुत प्यार से देखते हैं, तो माँ बाप दिल में आ जाते हैं, राइट? ऐसे ही शिव बाबा जो क्या करता है, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण दिव्य जन्म, नया जन्म देता है, दिव्य डिवाइन जन्म है, ये गर्भ से जन्म नहीं है हमारा, दिव्य जन्म है, तो हमारे दिल में कौन आ जाता है? शिव बाबा आ जाता है, राइट? शिव बाबा कौन है? कौन है शिव बाबा? शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है सर। ज्ञान माने सत्य की समझ, ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन और ड्रामा, ये इसका सागर में दिल में आ गया। पवित्रता का सागर में दिल में आ जाता। पवित्रता माना क्या? पवित्रता ज्ञान माना ABCD, सत्य की समझ आ गई। पवित्रता माना क्या? कि मैं अपने को अपने सत्य स्वरूप में टिके दूसरे के सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करता हूं, इसको पवित्रता कहते हैं। शांति माना क्या? शांति का मतलब क्या है? 90% हमारे विचार कहां से आते हैं? पास्ट की बीती हुई बातों से, जो पास्ट में हमने लोगों को तंग किया ना, हमको साइकोलॉजिकली या इमोशनली हर्ट किया, हमारी भावनाओं को हर्ट किया, या भविष्य में मेरा क्या होगा, तो 90% विचार वहां से आते हैं, 10% विचार ही वर्तमान से आते हैं, तो 4 ही विचार सीधा वर्तमान से आते हैं, सुना? और आज कितने विचार चलते हैं लोगों के एक मिनट में? 30 से 40 विचार चलते हैं। तो 90% विचार जब ये समझ लेते, पवित्रता आ जाती है ना, अब इसकी गहराई में जाएंगे, पवित्रता आती है तो क्या होता है, मेरे 90% विचार फुल स्टॉप लग जाता है, मैं पास्ट को भी भविष्य को भी वर्तमान में आ जाता हूं, तो बीइंग इन द प्रेजेंट, उसको पीस कहते हैं, उसको शांति कहते हैं, बीइंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहना, अपने को आत्मा समझ के, ABCD वर्तमान है ना, मैं आत्मा, परमात्मा के संतान, मेरे सर्व संबंध उनके साथ, डी माने ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे अपने कर्मों का फल था, नहीं? किसके फल था? मेरे अपने किए कर्मों का फल था, जो मुझे दुख मिला, धोखा मिला, सुख मिला, किसने मेरी महिमा की, अपमान किया, इंसल्ट की, गाली दी, जो क्यों किया उसने मेरे साथ, क्यों, जो मैंने बोया था वही मुझे मिला, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार मिला। अगर मैं एक बेर का पेड़ बो दूं तो मुझे क्या मिलेंगे? बेर मिलेंगे ना, वो झाड़ी झाड़ी कांटे भी होंगे, बेर भी होंगे। अब मैं अमरनाथ की यात्रा करने चला जाऊं, 4 धाम की यात्रा कर रहा हूं, और मैं कहूं कि बस भगवान मेरे बेर के पेड़ पे आम लगा दे, मुझे तो आम खाने, हो सकता है? पॉसिबल है? हो सकता है? भगवान लगा देगा ना, उसका कुछ भी शक्तिशाली है ना, नहीं लगा सकता? मेरे पेड़ के पेड़ पे सेब लगा दे, लगा सकता है? भगवान की पावर है क्या? नहीं लगा सकता। कि तो भगवान क्या कहता है, बच्चे अब अगर तुम अगर अपने दिल में मुझे बिठा करके सच्ची दिल से अगर मुझे याद करोगे और मेरे श्रीपद पे कर्म करोगे तो क्या होगा, वर्तमान भी तुम्हारा ज्ञान स्वरूप पवित्र स्वरूप हो जाओगे, शांत स्वरूप रहोगे, विचार स्लो हो जाएंगे, सबके प्रति स्नेह पैदा हो जाएगा, सुख आनंद और शक्तियों से भरपूर रहोगे, भविष्य में राज्याधिकारी बन जाओगे, भविष्य राज्याधिकारी बन जाओगे, वर्तमान स्वराज्याधिकारी, भविष्य राज्याधिकारी, राइट। तो शांति समझ में आई, क्या शांति किसे कहते हैं और प्रेम किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं, ये सहने में जब आगे आगे इसमें आगे चलता हूं तो भटक जाए, तो टाइम बहुत थोड़ा ना, टाइम पूरा हो जाएगा। तो हम जब दिल में शिव बाबा को आया ना, तो उसको चलते फिरते बार बार रिवाइज रियलाइज करना चाहिए। मेरे दिव्य ब्राह्मण जन्म हो गया ना, तो दिव्य, अभी दिव्य जन्म, मेरा पुराना जन्म नहीं है। तो देवान देवीमान, जैसे लाइट आई ना, अंधेरा खत्म, देवान अंधेरा है, देवीमान अंधेरा है, और देवीमान के संबंध संपर्क याद आना अंधेरा है, पदार्थ याद आना अंधेरा है, देवीमान से दीदी यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, नीचे क्यों बैठते हैं, ये तो ऊपर बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, देवीमान के संबंध संपर्क याद आना अंधेरा है, पदार्थ याद आना अंधेरा है, और देवीमान से पैदा होने वाले पांच विकार ये दिल में पहले भरे हुए थे ना, दिल में पहले क्या भरा होता, ये तो भरे हुए थे दिल, मेरे दिल में चेतना में भरे थे, देवान देवीमान, देवीमान के संबंध संपर्क, पदार्थ और आसुरी स्वभाव संस्कार दिल में भरे हुए थे। जैसे शिव बाबा मेरे दिल में आया, ये पांचों अंधेरा भाग गया और क्या आ गया, शिव बाबा आ गया, ज्ञान का सागर आ गया, पवित्रता का सागर आ गया, शांति का सागर आ गया, सच्चे स्नेह का सागर आ गया, सच्चे और निस्वार्थ स्नेह का सागर आ गया, अतीन्द्रिय सुख का सागर आ गया, आनंद का सागर आ गया, और सब शक्तियों का सागर आ गया, और वो उसमें वो एक ही परमात्मा जिसमें सातों चैतन्य आत्मा को जो बैलेंस है, बाकी मनुष्यों में बैलेंस नहीं है, ब्राह्मणों में बैलेंस नहीं है, फिर भी ज्ञान बहुत ज्यादा है, पवित्रता कम है, किसी में पवित्रता भी है, शांति कम है, फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, किसी को शांति भी है पर स्नेह अच्छा है सबके प्रति नहीं है, किसके अंदर स्नेह है कि तो अतिथि सुख कितनी फीलिंग नहीं है, आनंद नहीं है, शक्ति कोई कम है, कि तो उसमें सातों एनर्जी का बैलेंस है, वो हीलिंग एनर्जी का सागर है, कुछ भी हो जाए हीलिंग वही करता है, और वही ज्वालामुखी शक्तिशाली योगाग्नि का सागर है, राइट। उसको दिल में सदा रिवाइज और रियलाइज करते रहो, महसूस करते रहो, चलते फिरते मेरे दिल में कौन बैठा है, यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से नीचे आत्मा की सीट है ना, तो वही तो दिल है, वहां बाबा को महसूस करते रहो, ज्ञान का सागर, ABCD का सागर समझो, तो मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, वही मेरा सारा संबंधी है, और ड्रामा में जो हुआ अच्छा, अब बाबा की श्रीमत पे कर्म करेंगे तो स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य राज्य अधिकारी बनेंगे, राइट। तो ये बार बार महसूस करते रहो, पवित्रता का सागर अर्थ सहित। आप देखते हैं जैसे दिल में बाबा आता है ना, तो बाबा ने कहा था मुरली में, आपने सुना होगा मुरली, कई बार मुरली में भी आता है, जैसे दिव्य ब्राह्मण जन्म मिलता है, बाबा हमको दिव्य दृष्टि रूपी गिफ्ट और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट हमको तुरंत दे देते हैं। पर दिव्य दृष्टि रूपी गिफ्ट माना ज्ञान का तीसरा, आज की मुरली में भी था तीसरे पेज पर, ज्ञान का तीसरा नेत्र कब खुलता है, दिल में अगर बाबा है तो ज्ञान का तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि खुल जाती, एक्टिव हो जाती, कब एक्टिव होती है, दिल में अगर बाबा आ गया तो दिव्य दृष्टि रूपी लिफ्ट गिफ्ट एक्टिव हो गई। जैसे वो बटन ऑन करना पड़ता है ना मोबाइल को, तो बटन होता है ना, स्विच ऑन नहीं करो, स्विच ऑन कब होगा, दिव्य दृष्टि रूपी लिफ्ट जब दिल में बाबा आ गया। और ब्राह्मण शब्द में राज छुपा हुआ है, ब्राह्मण शब्द क्या है, ब्राह्मणा बेहद की बुद्धि, या यूं कहो सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि, ब्राह्मणा सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि, मां माना मनमना भव, और ना माना विष्णु के समान संस्कार। दिल में बाबा को बिठा के क्या करो, अपनी बुद्धि को कैसा बनाओ, सच्चित आनंद स्वरूप बनाओ, और फिर उससे मन मनाभावों के मध्याजी हो जाओ, माना फरिश्ता। मध्याजी का मतलब क्या है, मध्याजी के तीन अर्थ हैं, बताओ कौन कौन से। पहले मध्य से, जो हमारे अंदर मध्य से हमारे अंदर स्वभाव संस्कार आए ना, आसुरी स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके बाल बच्चे पैदा हो गए, उन पे विजय हो जाएगी मध्याजी, मध्य के संस्कार खत्म हो गए। दूसरा मध्याजी किसे कहते हैं, फरिश्ते को कहते हैं, जो मेल फीमेल के भान से परे रहता है वो फरिश्ता है, राइट। स्त्री पुरुष के भान से परे वो फरिश्ता है, मध्य है ना, मध्य में आ गया ना, फरिश्ता, फरिश्ता फरिश्ती होते हैं क्या, तो फरिश्ता हो गया। और फिर देवता, मध्याजी देवता को भी कहते हैं, राइट, क्योंकि देवान से परे रहते हैं, देव विमान से परे रहते हैं, तो देवी देवता, राइट। तीन अर्थ हो गए ना, तो मध्याची बन जाते हैं, है ना। तो मनमरा वसो मध्याची हो गए, नहीं हो गए। तो ये जो है हमारे अंदर ब्राह्मण शब्द को याद रखे ना, मेरा दिव्य ब्राह्मण जन्म है। दिव्य ब्राह्मण जन्म आता है क्या हुआ, माँ बाप दिल में आ गए, शिव बाबा माता पिता घर में दिल में आ गया, और फिर ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण शब्द याद आते ही क्या आना चाहिए, मेरे को अपनी बुद्धि कैसी बनानी है, सच्चित आनंद स्वरूप। दिल में बाबा को बिठा के उससे मुझे अपने दिल को क्या बनाना, बुद्धि को सच्चित आनंद स्वरूप बनाना, और मन को मनमना भाव करना, और विश्व संस्कारों को आदतों को क्या बनाना है, आदतों को मुझे क्या बनाना है, क्या बनाना है, विष्णु के समान बनाना है ना, सतो प्रधान बनाना। सतो प्रधान संस्कार माना दैवी गुण, 36 दैवी गुण मेरे जीवन में आ जाए, ये मुझे था, ये मेरा लक्ष्य है। तो जैसे शिव बाबा दिल में आता, ज्ञान की दिशा खुल गया, और खुलते ही क्या होगा, अब आपको अंदर क्या याद आएगा कि मैं कौन हूं। अब ज्ञान के तीसरे से अपने आप को देखो या समझो, देखना तो है नहीं, समझना कि मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, सात चैतन्य आत्मा को जो को पुंज परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम सत्य परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, परम पिता पिता का परम पिता परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से कंबाइंड। बाबा ही मेरा संसार है। इसके पीछे देखो, जैसे बाबा कहता है, मुरली में कहता था बाबा, एक बार जब मुझे संदेश आया था ना गुलजा दादी के द्वारा, जब मुझे हार्ट की बीमारी हुई थी, हार्ट का प्रॉब्लम शुरू होने से पहले, तो बाबा का संदेश ये आया था, बच्चे पहले तो अंतर्मुखी हो जाओ, अगर सचमुच में आप विक्रम विनाश करना चाहते हो, अपने हार्ट की बीमारी ठीक करना चाहते हो, जो लाइलाज है दुनिया के हिसाब से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने क्या करना पड़ेगा, अंतर्मुखी माना अंदर में जो मैं आत्मा हूं, परमात्मा से कंबाइंड होकर सोचना, निर्णय करना, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना पीना, सांस लेना, हर कर्म करना, संबंध संपर्क में ये शुरू कर दो। बाह्य मुक्ता, अखबार देखना, टीवी देखना, ये देखना बंद कर दो। दुनिया वालों से बातें करना, बेकार की बातें, इधर उधर की बातें करना बंद कर दो। अंतर्मुखी हो जाओ, हर समय श्वासों श्वास ही अटेंशन रहेगा, तो तुम्हारी जो असंभव बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, राइट। लाइलाज बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी, क्यों, मुझे कहा था 2 साल के अंदर मर जाओगे, कभी मर जाओगे। तो फिर बाबा से संदेश ये आया था कि बच्चा अंतर्मुखी पहले हो जाओ, फिर अपनी सारी बातें लिख के दो बाबा को, सुबह से लेकर रात, बचपन से लेकर अभी तक सारी बातें लिख के दो। फिर बाबा ने कहा, अपने दिल में जब दिव्य ब्राह्मण जन्म है, तो दिव्य ब्राह्मण को पहचानो, मेरे दिल में कौन है, हर समय उसे रिवाइज कर, रियलाइज करो। और तीसरी आंख जब खुलेगी ना, अब तीसरी आंख खुल गई, तीसरी आंख से अपने जीवन को देखो, दूसरों को भी देखो, तो पहले अपने सत्य को देखो, इसको सच्ची दिल की लगन से ए, और बाबा कहता है बच्चा एबीसीडी करता है ना, मैं पहले से एबीसीडी बोलता था, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, तो बाबा जो बच्चा बोलता ना, ए और बी की गहराई में जाओ, आत्मा कैसे शरीर को चला रही है, परमात्मा कैसे सारी सृष्टि को चला रहा है, तो इसकी गहराई में चले जाओ। आत्मा कैसे, आत्मा के साथ चैतन्य आत्मा उड़ जाए, मन मना टीम उसके माध्यम से शरीर को चला रही है, क्योंकि आत्मा के पास एनर्जी नहीं है, टीम भी नेगेटिव है, वो छन्नी भी रुकी पड़ी है, जो ऊपर थोड़ी बहुत एनर्जी होनी चाहिए जाती नहीं है ना, तो वो बेचारा हार्ट कैसे काम करे, शरीर कैसे काम करे, घुटने कमर कैसे काम करे, काम ही नहीं करेगी। अब शिव बाबा पावर हाउस है, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, पावर हाउस से कनेक्ट करें, वो कैसे आएगी, जब सच्ची तारण स्वरूप बुद्धि होगी तो करंट आएगी, क्लीन और क्लियर बुद्धि होगी तब तो करंट आएगी, राइट, तब करंट आएगी, बैटरी चार्ज होगी, चार्ज होगी तो आत्मा से एनर्जी आएगी, तो वो मन के मन मुरली से टीम पॉजिटिव हो जाएगी, मुरली के 100% पॉजिटिव टीम है, मुरली को मत्ते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो तो क्या होगा, आपका मन पॉजिटिव हो जाएगा, मन पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में जाने शुरू हो जाएगी, सात एनर्जी ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखान शक्ति जाएंगी, तो अपने आप ही हार्ट ठीक हो जाएगा, जो भी अंग हो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि पाप कर्म से तो बीमारी आई, हार्ट की बीमारी है चाहे ब्रेन की, चाहे आंखों की, चाहे लंग्स की या पेट की, कोई बीमारी भी क्यों आती है, पाप कर्म करने से आती है, बिना पाप कर्म के तो नहीं आती, कर्मों का भोग है। तो ये जब बाबा ने समझाया था कि बच्चे सच्ची दिल के लगन से ए और बी की गहराई में चले जाओ, और सीमा संबंध के रहस्य में चले जाओ, करंट कौन खींच सकता है बाबा से, अगर मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ है तो कोई करंट खींच सकता हूं, किसी एक के साथ मेरा थोड़ा सा भी संबंध है, मेरे को कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो करंट नहीं आएगी। कोई दोस्त का संबंध है, बेटे का संबंध है, बेटी का संबंध है, किसी एक से भी रखा ना तो करंट नहीं आएगी। कहता जो तुम्हें बनाना है मेरे को बना लो, मां बना, मां चाहिए, बाप चाहिए, टीचर चाहिए, सदगुरु चाहिए, बंधु माना बड़ा भाई बड़ी बहन चाहिए, सखा चाहिए, दोस्त चाहिए, साजन चाहिए, सर्जन चाहिए, बच्चा चाहिए, मैं ही हूं तुम्हारा सब कुछ। किसी एक तरफ भी बुद्धि एक परसेंट भी गई तो तुम्हारा काम खराब हो जाएगा, करंट नहीं आएगी। और डी माना ड्रामा, संसार रूपी नाटक में मुझे ये तकलीफ क्यों हो गई? वो व्यक्ति सबसे तो प्यार से बात करता है, मेरे को डांट देता है हमेशा, पता नहीं होता, सबसे तो व्यवहार उसका बहुत अच्छा, मेरे खिलाफ हमेशा मुझे बदनाम करना या मुझे तंग करना, अपमान करना, नहीं कोई मौका छोड़ता ही नहीं, क्यों? या मुझे ड्रामा में मुझे हार्ट की बीमारी क्यों हो गई, मुझे डायबिटीज क्यों हो गई, क्यों हो गई? उसके राज में चले जाओ, सीक्रेट में चले जाओ, उसमें मगन हो जाओ। जब उसमें मगन हो जाओ, ए बी सी डी के राज में चले, गहराई में गए, आत्मा कैसे, परमात्मा कैसे, संबंध के करंट खींचे, सब कैसे करंट खींचनी, और राज कि मेरे को एनर्जी आएंगी ना तभी तो मेरा सब ठीक होगा। मान लीजिए मेरे को बहुत विचार चलते हैं, मेरा बहुत सेंसिटिव हूं, थोड़ी बहुत गुस्सा आता है, अपने मन की बात शेयर नहीं कर सकता हूं, दूसरे के अपगुण दिखाई देते रहते हैं हमेशा, बदलने की किसी को बदला मैं फॉरगिव नहीं कर सकता हूं, तो ये क्यों हो रहा है? विक्रम बने जा रहे हैं ना, विक्रम बने जा रहे हैं, बाबा का बनने के बाद भी बन रहे हैं, हो रहा नहीं हो रहा, तो कैसे विक्रम विनाश होंगे, पाप कर्म कैसे भस्म होंगे? तो ऐसे जब करेंगे तो क्या होगा आपके अंदर, जब ऐसे करोगे ना तो शिव बाबा महसूस होगा, शिव बाबा मुझे क्या कर रहा है, अपना मनुष्य से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा के मुझे राजयोग सिखा रहा है, और रचता और रचना के आदि मंदिर के ज्ञान समझा के मुझे ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता और बिजरू बना करके मुझे वापस घर ले जा रहा है परमधाम घर में, और वापस फिर स्वर्ग में मुझे आना है। तो जब आप बार बार रियलाइज करोगे ना, ये बार बार महसूस करना, सच्चे दिल से महसूस करने में क्या फर्क है, सच्चे दिल से महसूस करने में क्या होता है, मुझे लक्ष्य भी दिखाई देता है, मुझे वहां पहुंचना है, पर रास्ते में मेरे अंदर क्या कमजोरी वो भी दिखाई, वो भी महसूस हो कि बाबा मेरे अंदर तो एक कमजोरी है, मैं तो कैसे पहुंचूंगा। जब तक खुद को रियलाइज नहीं होती अपनी कमजोरी, तब तक कोई व्यक्ति किसको हजार बताए कोई बदलता नहीं। हर एक अपनी कमजोरी को जानता है, नहीं अपनी प्रॉब्लम्स को जानता है, और वो इसका निवारण करता है, भगवान भी चाहे तो नहीं कर सकता है, कर सकता है, जब तक नहीं रियलाइज करता तब तक कैसे महसूस। इसलिए बाबा ने कहा अंतिम कौन सा कोर्स होगा, रियलाइजेशन कोर्स होगा। कौन सा कोर्स होगा? रियलाइजेशन कोर्स होगा। जब हम रियलाइज सच्चे दिल से महसूस करेंगे ना कि हाँ ये मुझे बनना है, और बीच में मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको निकाल दूंगा तो ये बन जाऊंगा, राइट, है ना। तो ये रियलाइज करते करते जब ऐसा महसूस करते हैं तो मेरे अंदर मेरे को अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, मेरे सत्य स्वरूप मेरे को इमर्ज होने लगता है, और आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज होने लगता है, खुलता है। तो इसमें स्थित होकर मैं कर्म करता हूं, जिसको हम कहते हैं पवित्रता की पहली स्टेज। फिर अपने भी स्वरूप में इमर्ज करके परमधाम वाला स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार करता हूं, संकल्प बोल कर्म करता हूं, और सामने वाले का भी वही स्वरूप इमर्ज करता हूं, चाहे मेरी दोस्त हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, भाई बहन, कोई भी हो, ऑफिस में काम करने वाले, घर में काम करने वाले, कोई भी कर, उसका भी वही स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार करना, इसको दूसरी डिग्री पवित्रता कह सकते हैं। फिर तीसरे लेवल की पवित्रता कौन सी है, क्योंकि हमारे अंदर फाइलें तो भरी हुई हैं तेरह जन्मों की, पाप कर्मों की, तो हालांकि हम समझ के व्यवहार करते हैं फिर भी क्या होता है, कोई ना कोई पुरानी फाइलें खुल जाती है, लगाव झुकाव पैदा हो जाता है, होता नहीं होता, लगाव झुकाव वो अच्छा लगने लगता है, उसका झुकाव उसके प्रति उसके प्रभाव में आ जाते हैं, कभी टकराव में भी आ जाते हैं, फिर तनाव पैदा हो जाता है, तो ये भी अपवित्रता है। तो लगाव झुकाव प्रभाव टकराव और तनाव से मुक्त, ये तीसरे लेवल की पवित्रता है। फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं ज्ञान योग में चलते चलते, फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरे हमारे साथ गलत करते, फिर हम क्या क्यों कैसे करते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं, तो ये भी अपवित्रता है। वैध संकल्प भी अपवित्रता है ना, तो चौथे लेवल की अपवित्रता हो गई। तो ब्रह्मचर्य तो मैं पालन कर रहा हूं, किंतु कभी कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ भी आ रहा है, कभी मोह भी आ रहा है, परिवार है चलाना पड़ता है, अहंकार आ रहा है, तो ये भी अपवित्रता है। ये पांचों छोड़ना तब जरूरी है ना, तो ये छठे पांचवे लेवल की पवित्रता हुई। छठे लेवल की पवित्रता कौन सी है? छठे लेवल की पवित्रता जो बताया ना, व्यर्थ, व्यर्थ जो चलता है ना, जो अलस्य अलबेलापन, व्यर्थ अलस्य करना भी भगवान का बच्चा बन के फिर अलस्य करना अपवित्रता है, अलबेलापन करना अपवित्रता है, किसी के अवगुण देखना अपवित्रता है, किसी के प्रति बदला लेने की भावना रखना अपवित्रता है, शक करना अपवित्रता है, अनुमान लगाना अपवित्रता है, चिंता करना अपवित्रता है। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, मेरा साथ ही, मैं चिंता करूं? हमने बड़ी दादी को देखा, कभी चिंता की नहीं। दीदी तो जानती है, बड़ी बहनें जानती होंगी, दादी से, बड़ी दादी के साथ रही है, कैसे दादी कैसे बेफिक्र बादशाह रहती थी, कितनी प्रॉब्लम आती थी। मैं तो दादी के बहुत नजदीक रहता था, सुबह शाम हर समय दादी के साथ रहना होता था, दादी कभी फिक्र नहीं। दादी जानकी, दादी चंद्रमणि शाही छोड़ा, एकदम बेफिक्र बादशाह, जैसा बीपी था पहले वैसा ही बीपी। दादी ने मुझे सुबह मेमोरी चला करके दादी के पास गया, दादी कहती डॉक्टर क्या बात है, देख दादी की स्थिति हिली है क्या, चेक करना चाहते हो? मैंने कहा दादी नहीं, चेक तो नहीं करना चाहता, अगर आप कहो तो चेक कर लूं। तो मैं दादी का बीपी चेक किया, उनका बीपी 130-80 होता था, उसमें भी 138, हार्ट रेट भी उतनी थी, जरा भी हिली नहीं तो उनके साथ थी, मतलब अंग संग रहते थे ना, वो एडिशनल चीफ थी, दादी चीफ थी, वो एडिशनल चीफ थी, बिना उनकी आपस में सलाह के कभी कुछ करते ही नहीं थे। दादी का राइट हैंड कह लो, चली गई दादी, अचानक चली गई, है ना, दादी बेंगलोर गई थी, अचानक गई नहीं गई, तो दादी पर हिली नहीं, जरा भी नहीं हिली, स्थिति हिली नहीं हिली। तो ये जो है पवित्र, सात लेवल की पवित्रता है। कितने? अच्छा, छह लेवल की, सातवें लेवल की पवित्रता कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता, जैसे ब्रह्मा बाबा की थी ना, परिवार, माँ पत्नी है, उसको भी, पत्नी भी उसको स्त्री रूप में देख रही है कि बाबा है, पति नहीं है मेरा, वो भी बाबा उसको पत्नी के रूप में नहीं देख रहा है, बेटी है, इतनी पवित्रता, सोपन तक भी पवित्रता, संकल्प भी अपवित्रता करने, संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क सोपन तक भी पवित्रता। फिर सत्संग, बाबा और मुरली के अलावा कुछ और है ही नहीं दुनिया में, यही ब्रह्मा बाबा की मानता थी। नहीं, संग भोजन, अन्न भोजन, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान सात्विक भोजन, माना सात्वगुणों को बढ़ाने वाला भोजन। बाबा ने कभी चाय भी नहीं पी, पता है आपको, बाबा ने कभी चाय भी नहीं पी, बाबा का भोजन एकदम सात्विक भोजन रहा सदा, खाली बुक का भोजन नहीं, आंखों का भोजन भी, कानों का भोजन भी, क्योंकि आंखों से जो खाते हैं ना, आंखों से खाते नहीं, खाते हैं कानों से भी, खाते हैं सुनते हैं ना, तो वो भी सात्विक। और देवी गुणों की धारणा, बाबा के 36 के 36 देवगुण के जीवन में दिखाई देते थे, व्यवहार में दिखाई देते थे, नहीं दिखाई देते। तो ये सातवें लेवल की पवित्रता, इसे कहते ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी ना। तो ये जो है एक्चुअली क्या है, ये हमारा, ये जो है ना, सच्ची दिल साफ दिल, माना सच्ची दिल माना जिसमें बाबा के अलावा कुछ और नहीं है, साफ दिल माना दिल में मुरली के अलावा कुछ और नहीं है, तीसरी आंख खुली उसका ही सारा दिन मनन चिंतन चलता रहता है, रिवाइज रियलाइज करता है, वो है पासपोर्ट सूक्ष्म बदल में जाने का। और वीजा कौन सा है? पवित्रता वीजा है। वीजा के ग्रेड होते हैं ना, तो कौन सा वीजा चाहिए आपको, कौन सा चाहिए? रेड कार्पेट वेलकम वाला चाहिए ना, प्रधानमंत्री जाता तो एयरपोर्ट पे सीधा वेलकम करते, नहीं करते पवित्रता, ऐसा ऐसा वाला वीजा चाहिए ना। और फिर जब ऐसी पवित्रता, ब्रह्मचारी वाली पवित्रता आ गई, तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगता है पास्ट को, और अपने सत्य में टिक के परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर हर कर्म करते हैं, इसको शांति कहते हैं। शांति आ गई, अब शांति आ गई क्योंकि बाबा से रहकर कंबाइंड रहकर कर्म करते हैं, तो क्या होता है अभी हमारे अंदर, बाबा देख, बाबा को सबको सबको एक्सेप्ट कर रहा है, डाकू चोर आतंकवादी पुण्य आत्मा महात्मा जो भी है, सबकी बराबर पालना कर रहा है, सबको हवा पानी बराबर, बुद्धि बराबर, जिसको जो करना करो, कुछ मना करता है क्या? डाकू को भी जाता है तो वो भी कहता है सास्तु, आज बहुत अच्छा डाका डालना चाहिए, बहुत अच्छा, चल जाओ। जो आतंकवादी भी बम बांध के जाएगा, कहते अच्छा कोई बात नहीं जाओ, सफलता मूर्त भाव नहीं, क्योंकि बाबा को क्या पता है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, मना कर उसको भी नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, हम तो जजमेंटल हो जाते हैं, नहीं हो जाते। तो ऐसा स्नेह, जैसे एक माँ के बच्चे, तीन बच्चे हुए, एक पहला गोरा बच्चा पैदा हुआ, दूसरा सांवला, तीसरा पैरालाइज्ड है, तो मां क्या करेगी? सांवले को कम प्यार करेगी, गोरे को ज्यादा प्यार करेगी, और वो पैरालाइज वाले का किसको तो ले जाओ, मेरे जनी चाहिए, ऐसे करेगी क्या? बल्कि ज्यादा कमजोर वाले की ज्यादा मदद करेगी ना। इसको कहते स्नेह। कुछ तुम्हारी गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, और तुमको महिमा कर रहा है, दोनों बराबर लगे, दोनों को बराबर दिल से स्वीकार करके उसकी बराबर पालना करो। ये ब्रह्मा बाबा का स्वभाव था। इसको बोलते स्नेह। ऐसा स्नेह सबको चाहिए। कोई दुनिया में मेरी खिलाफ मेरे लिए कुछ करे ना करे, किंतु वो तू तो है ना, एक तू है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है नहीं? एक ही था ना, दिल में तुझे समा के बंद कर लूं मैं ये आंखें, पूजा करूं मैं तेरी, होके रहूं मैं तेरी, दिल में तुझे समा के दुनिया से आंखें बंद कर लो, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तू है और मैं हूं, बस सारा टाइम उसका ध्यान रहे, ऐसी ऐसा प्यार ना दिल का। दिल में बाबा बैठा है तो अपने आप ही ज्ञान स्वरूप स्थिति आ गई, पवित्र स्वरूप भी आ गए, और शांति भी आ गई, और स्नेह भी हो गया। जैसे स्नेह आया ना विश्व में हर आत्मा के प्रति, कोई कुछ भी कर रहा हो, किसने कुछ भी किया हो, सारे विश्व में हर आत्मा के प्रति स्नेह आ गया, तो अब दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो गई। तब दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती है। ऐसे नहीं आप ऐसे बैठ जाओ सूक्ष्मतम में, उड़ जाओ बाबा के पास, बाबा से ऐसे करके आ गए। मैं भी ऐसे ही करता रहता था, बाबा के पास गया, बाबा ने ऐसे ऐसे किया, प्यार किया, और हाथ बाबा ने फेरा मेरे दिल पे, अच्छा लगा, नीचे आया तो फिर वैसे कर वैसा ही। तो मेरी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, बाबा ने कहा ऐसे कर लो, फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी विधि गलत है, तुम्हारे पास पासपोर्ट है क्या ऊपर जाने का? मैंने कहा पासपोर्ट क्या होता है? फिर बाबा ने कहा वीजा है, टिकट है, वहां पैसा है ऊपर रहने का, मनी है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये तुम्हारा पास, सच्ची दिल साफ दिल तुम्हारा पासपोर्ट है, पवित्रता तुम्हारा वीजा है, और क्या है, शांति तुम्हारी टिकट है, शांति तुम्हारी टिकट है ऊपर जाने की। जब तक पास को फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो बिंदु बन के बिंदु से कंबाइंड होकर कैसे ऊपर आओगे? और स्नेह सबको स्वीकार कर लिया तो सोते हुए जाने की टिकट है। कौन सी वाली? बिजनेस क्लास की टिकट है। माना नींद में भी तुम्हारा तुम सूक्ष्मतम में रहे हुए हैं, सुना? यस, नींद में भी फील होगा बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, सपने भी वही आएंगे। तब ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक सेकंड में मुझे आत्मा को पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार रूपी लाइट का सूक्ष्म शरीर, पवित्र बुद्धि उसका इंजन है दिव्य सूक्ष्म शरीर का, और मन सारे शरीर में फैला हुआ है, ये इसका सूक्ष्म शरीर है, लाइट का सूक्ष्म, जिसमें सातों लाइट है, ज्ञान की लाइट, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति की लाइट है मन। और संस्कार क्या है? ये ड्रेस है, चमकीली ड्रेस है, मेरे पवित्रता भी है, मेरा भोजन भी शुद्ध है, और संघ भी शुद्ध है, सात्विक है, और देवी गुणों की धारणा भी है, पावरफुल अमृत वेला है, मुरली है, सारा दिन मुरली, बस अमृत क्लास में तो जाता हूं, सारा दिन मुरली अंदर बजती रहती है, अटेंशन मुरली पे रहता है, और सोने के पैसे सच्चा सच्चा पोता मेरे बाबा को दे देता हूं, जैसा बाबा कहे वैसा मैं करता हूं। तो क्या हुआ? ये मेरी चमकीली ड्रेस है, राइट? देवी गुण की धारणा की हुई है, ड्रेस है वो मेरी चमकीली। जैसे कहते ब्रह्मा बाबा सबसे ज्यादा चमकीली ड्रेस है, कहते नहीं कहते? फरिश्तों का राजा है, सूक्ष्मतम में बैठा। तो जैसे जैसे धारणा होती जाएगी ना, मैं बाबा की गोद में पहुंचता जाऊंगा, तो इस ड्रेस के साथ सूक्ष्म शक्ति में बाबा की सूक्ष्मतम में बाबा दादा की गोद में पहुंच जाता हूं। यह विस्तार को सामने शक्ति। तो पहली शक्ति कौन सी जागृत, कौन सी शक्ति हुई? सत्य को परखने की शक्ति। दूसरी शक्ति कौन सी हुई? यथार्थ निर्णय की दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, वो दूसरी शक्ति हुई। तो मेरा अगर दिल सच्चा साफ है तो विवेक जागृत है, विवेक माना सत्य को परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति दिव्य है, और मेरा चित्त शांत एकाग्र आनंदमय है। अर्थात एक सेकंड में यह दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे आत्मा को सूक्ष्म वेतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंचा देती है। ये विस्तार को साधन वाली शक्ति आ गई। बाबा से मिल रहे, बाबा बस पाना था सो पा लिया, काम के बाकी रहा, सर्व प्राप्ति आ गई, ज्ञान सागर में समा गया, पवित्रता के सागर में, शांति के सागर में। ये बोलने की चीजें नहीं है, महसूस करने की, योग करने की चीज, योग करने का समय चल रहा है ना, महसूस करने की चीज। बाबा की गोद में हूं बस, सूक्ष्म वतन में बाबा की, कोई ये नहीं कि आपको फील हो रहा है कि सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में बाबा मुझे हाथ फेर रहा है, अंदर से फील हो रहा है बस कि ज्ञान सागर में, पवित्रता के सागर में, शांति के सागर में, अर्थ सहित महसूस करो। अतिंद्र सुख माना बस और कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा की गोद में जो पाना था पा लिया, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। और सर्व प्राप्ति संपन्न, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर वही तो है, स्नेह का सागर वही तो है, नहीं और क्या मुझे क्या चाहिए। संतुष्ट आगे स्वयं से भी संतुष्ट हो गया, बाप से भी संतुष्ट, ड्रामा से भी संतुष्ट, कोई कंप्लेन नहीं है, और परिवार से भी संतुष्ट हो, लौकिक अलौकिक परिवार से संतुष्ट हो, इच्छा मात्र में विद्या हो गया। अब क्या आनंद की एनर्जी आ गई, किसकी एनर्जी आ गई, आनंद आ गया। आनंद माना क्या, लवलीन स्थिति में आत्मा लवलीन हो गई परमात्मा के प्यार में, सूक्ष्म शरीर के साथ वैसे बाबा के बस लवलीन हो गए, कोई विचार ही चलना बंद हो गए ऑलमोस्ट। ये आनंद की स्थिति आई तो क्या हुआ, अब मैं सत्य को परख, मेरी अशरीर स्थिति आ गई, अशरीर माना मैं आत्मा, बस भानी खत्म हो गया, देवान अशरीर बन गए, परम धाम घर में अशरीर, अशरीर बाप से कंबाइन हो गए, अशरीर बने। तो अशरीर बनने से क्या हुआ, थोड़ी देर में क्या हुआ, जैसे ईश्वरीय फिक्र बढ़ता जा रहा है, बेफिक्री बढ़ती जा रही है, तो ये जो होता है फिर भी मैंपन मेरापन खत्म नहीं, अशरीर अशरीर स्थिति में भी मैं आत्मा देह से अलग महसूस होती है, पर देह तो है, देह तो है, है ना, देह से अलग हूं पर देह तो है। तो इसका भी देह और देवभान का त्याग कर देना, मैंपन मेरेपन का त्याग कर देना, इसको बोलते त्याग। जब ये त्याग करते हैं तो क्या होता है, निराकारी स्थिति आ जाती है, क्या आ जाती है, निराकारी। और निराकारी बनकर जब निराकारी बाप से कंबाइंड होते हैं तब निर्विकारी बनते हैं। इसलिए क्या लास्ट का श्लोक याद था, क्या था, निराकार निराकारी, निर्विकारी निरहंकारी, याद है ना। तो निराकारी बनने से निर्विकारी बनते हैं, अशरीरी बनने से विक्रमी नाश नहीं है, हमारे पाप कर्म बसम नहीं होते, देवान खत्म हो जाता है, देवीमान खत्म हो जाता है, देवान के संबंध संपर्क भी भूल जाते हैं, देवान के पदार्थ भी भूलने लगते हैं, कि तू क्या होता है, क्या हो जाता है, किंतु ये हमारे पाप कर्म बसम नहीं होते। उनका सूक्ष्म रूप आलस्य अलबेलापन खत्म नहीं होता, दोष दर्शन बंद नहीं होता, इसे ब्राह्मण भी दोष दर्शन करते रहते हैं, बदलने की भावना नहीं खत्म होती, शक अनुमान बसम नहीं होता, चिंता भय खत्म नहीं होती, ईर्ष्या द्वेष बसम नहीं होती, राइट। तो जितना निराकारी रहने का अशरीर का साधन अभ्यास करो, बीच बीच में जब निराकारी उससे निराकारी बनेंगे, मैं अपन मेरे अपन का त्याग करेंगे तो निराकारी स्थिति आएगी, निराकारी बन गए निराकार बाप से कंबाइन लेंगे तो फिर हमारी निर्विकारी स्थिति आएगी, तब हमारे विक्रम विनाश होंगे, राइट, तब हमारे पाप कर्म बसम होते हैं। और जब निर्विकारी स्थिति होती है तो मास्टर बीज रूप बन के और बीज रूप आपसे कंबाइन कल्पवृक्ष जड़ में कंबाइन हो जाएंगे तो सारे कल्पवृक्ष को सकाश मिलेगी, सातों चैतन्य लाइट मिलेगी, तब जब सब अपने महसूस होंगे ना तो सहन करने की एनर्जी आ जाएगी। एक माँ को अपने बच्चे का लैट्रिन पेशाब साफ करना उसको बुरा लगता है क्या, और दूसरे बच्चे का करना पड़े तो अच्छा लगेगा उसको, नहीं करेगी, करेगी तो बहुत नाक मुंह से करके करेगी ना। जब अपनापन पैदा होता है ना, ये सब मेरे भाई बहन है, तो फिर वो भले मेरे को दुश्मन हो, गाली दे रहे हो, कुछ भी किया हो मेरे साथ, तो उसको सहन कर लेता हूं, और ऐसे केमिकल पैदा हो जाते हैं, सहन करने की शक्ति आ जाती है। तो पाप कर्म ना तो निराकार स्थिति में खत्म होते हैं, ना बीज रूप में खत्म होते हैं, ना शरीर में खत्म होते, कब कब खत्म होते, सहन करने से खत्म होते हैं, सुना, समाने से खत्म होते हैं, सहन करके समा लेना, सामना करते रहना सब और सहयोग करना। तो बाबा से जब कंबाइंड रहते ना, इसे बोलते सच्चे आनंद स्वरूप बुद्धि, दिल में सच्चा है, सत्य है, तो विवेक जागृत है, माना तीसरी आंख खुली हुई है, निर्णय शक्ति दिव्य है, तो चित्त शांत है, एकाग्र आनंदमय है, राइट। तो जब आनंद स्वरूप होता है ना, तो सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि क्या करती है मेरे अंदर, वो पैदा करती है क्या, चिंतन पैदा करती है, फाइलें खुलती हैं चित्त के आधार पे, किस आधार पे फाइलें खुलती हैं, चित्त के आधार पे फाइलें खुलती हैं, और फाइलें खुल जाती हैं चित्त के आधार पे, तो मेरी कौन सी फाइलें खुलेगी, सब पिछले कल्प की, मेरा जब संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप था वो फाइल खुल जाती है, फरिश्ता स्वरूप की फाइल खुल जाएंगी, परमधाम वाली फाइल खुल जाएगी, अनादि ज्योति बिंदु आदि देवी देवता स्वरूप की फाइल खुल जाएगी, और उससे फाइल मेरी स्थिति ऐसी बने महसूस होगी, जैसे ना कोई सपना याद आता है, कोई पुरानी बात याद आती है, तो क्या होता है, वो स्थिति ऐसी बनती है, उससे रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि, रूहानी भावना पैदा होती है, वायुमंडल बन जाता है, शब्द के प्रति शुभ भावना, शुभकामना पैदा होती है, तब मुरली याद आने लगती है। उस वायुमंडल में फिर मुरली याद आने लगती है, बाबा की मुरली अंदर बजने लगती है, बाबा ने आज ये कहा था, बाबा ने आज ये कहा था, बाबा ने ये कहा था। तो सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि वो यंत्र है जिससे क्या होता है, चित्त से चिंतन होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में चिंतन शुरू होगा, फाइलें खुलती हैं तो फिर हमारी चिंतन शुरू होता है मुरली का। हमारे लिए पुरानी दुनिया है ही नहीं, देव देह की दुनिया ही नहीं है, किसी ने क्या बोला याद ही नहीं आता है, क्या हुआ शरीर में बीमारी हो रखी, क्या हो रखा ये फील ही नहीं होता है। बाबा ने कहा यहां से टांग टूटी है तो भी पैदल चले जाओ दिल्ली तक, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे हार्ट के पेशेंट होते ना 50 कदम नहीं चलते, जब उनको सोल कॉन्शियस रहना सीख जाते ना बाबा की याद मिलना, तो 3-3 किलोमीटर चलते आराम से चलते, कोई प्रॉब्लम नहीं, डांस भी कर लेते आधा पौना घंटा, भूल ही गए ना सारा कुछ, खत्म हो गया। तो ये तो चिंतन बदलता है ना जब हमारा, तो चिंतन हर जो चिंतन बना ना, कोई चिंतन कोई विचार बार बार करो तो भावना बन जाता है, वो भावना से वाइब्रेशन, बाबा की मुरली को बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, रियलाइज कर रहा हूँ दिल ही दिल में सच्ची दिल से, तो वो मेरा लगता है बाबा कहता है कितना आज्ञाकारी बच्चा है। अच्छा माँ को याद कैसे क्या होता है, माँ की बातें याद आना, ये तो माँ की याद है, माँ की बातों को करना यही तो माँ के प्रति मेरा रिगार्ड है। तो बाबा की बातें मुझे याद है, बाबा मुझे तो बनना है ऐसा बनना है, बाबा मुझे तो ऐसा बनना है, बार बार रिवाइज भावना भाई, मेरे भावना से वाइब्रेशन बाबा तक पहुंचते। बाबा क्या कहते हैं, जब मुझे तुम याद करते सच्ची दिल से तो आपके दिल की याद मेरे दिल में, याद से याद मिलती, मैं तुमको पदम गुणा याद करता हूं। तो बाबा से, बाबा के पास क्या है देने के लिए, ज्ञान का सागर, पवित्रता के, शांति के वाइब्रेशन, प्रेम खुशी आनंद के वाइब्रेशन मेरे पास आते, वो छत्र छाया पदम गुण है ना, छत्र छाया बन जाता है, जहां जाता हूं वो साथ में चलता है नहीं, और मैं उसी में खोया रहता हूं। जैसे पंखा चल रहा है ना, पंखे की 3 पंखुड़ी है, चल रहा तो क्या हो रहा है, अभी दिखाई दे रही पंखुड़ी, तो देह अभिमान खत्म हो जाता है, देह अभिमान के संबंध से खत्म, पदार्थ खत्म हो जाते हैं, तो क्या हुआ वायुमंडल बन गया, दिव्य दृष्टि बन गई, मेरी रूहानी वृत्ति रूहानी दृष्टि बन गई, रूहानी वायुमंडल बन गया, उसमें रहकर साधन काम करता हूं तो क्या होता है, नई रिकॉर्डिंग हो जाती है, नई रिकॉर्डिंग क्या, ज्ञान की रिकॉर्डिंग होगी, पवित्रता की रिकॉर्डिंग, शांत कर्म में आने से रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ये याद रहे। मैं बैठा बैठा कर रहा हूं, उठा मैंने फिर वही गुस्सा करना शुरू कर दिया, वही बात नहीं, उसी भावना उसी वाइब्रेशन में रहो, उसी वायुमंडल में रहो, कर्म करते अपने कमरे में जहां बैठे हो, किचन में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, मेरी ओपीडी में मैं बैठता हूं, पेशेंट देखता हूं, जाता हूं आईसीयू में पेशेंट देखने जाता हूं, उसी वाइब्रेशन के, उसी वायुमंडल में जाता हूं, उसी भावना से देखता हूं, उसी वायुमंडल में देखता हूं, अगर मैंने उसमें देखा कर्म किया तो मेरा पवित्रता रिकॉर्ड हुई, शांति रिकॉर्ड हुई, सच्चा प्रेम रिकॉर्ड हुआ, इंद्रिय सुख आनंद शक्तियां रिकॉर्ड हुई। किसी ने मुझे रास्ते में गाली दे दी, मैंने सहन करके संभाल लिया, मुस्कुराता रहा, तो रिकॉर्ड हो गया, सहन शक्ति रिकॉर्ड हो गई, नहीं सामना भी कर लिया, फिर तो आगे बढ़ के आगे गया, फिर उसने पीछे पीछे आया, फिर उल्टा सीधा बोल दिया, सामना भी कर लिया और सहयोग भी कर लिया। अच्छा भाई साहब कोई बात नहीं, अच्छा मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आप क्या बात है मुझे बताओ, इग्नोर नहीं किया, सहयोग भी किया, तो रिकॉर्ड हो गया, राइट ना, इससे पाप भस्म हुआ। पाप भस्म कैसे होता है, ऐसे भस्म नहीं होता कि योग करके आए सब अच्छा अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, हाँ क्या बात है, कोई एक भी पाप माफ नहीं होता है, एक भी पाप माफ नहीं होता है। किसी को मैंने एक बार गाली दी थी 100 साल पहले, अब 1000 देनी है उसको मेरे को, अब मैं बाबा का बच्चा हो गया, वो 1000 के बजाय मुझे 999 माफ कर दे और एक एक ही गाली दे के चुप हो जाएगा, नहीं वो देगा 1000 ही, और 1000 सुननी पड़ेंगे, कि तो मैं बाबा की याद में हूं तो मेरा आभामंडल इतना बड़ा हो जाता है कि मुझे फील ही नहीं होती। सुना, गाली तो इतनी देगा, कम नहीं देगा, सुना, दुख तो उतना ही, धोखा उतनी बारी देगा कि तो मुझे फील नहीं होगा, समझ रहे। तो इसलिए सहन करके समाने से, सामना करने से, सहयोग करने से पाप भस्म होते हैं, और निर्विकारी स्थिति से निराकारी स्थिति में रहकर पाप भस्म होते हैं, विक्रमी वैसे भस्म होते हैं, राइट। तो जब नए संस्कार, अब नई नई स्मृतियां बन गई ना अभी, हाँ जब मैं इसमें रहकर कर्म करता हूँ, सातों प्रधान स्वरूप सत्तों प्रधान स्वरूप स्मृति में रहकर कर्म करता हूँ, तो व्यवहार में दैवी गुण दिखाई देने लगते हैं, 36 दैवी गुण दिखाई देने लगते हैं, तो ये मेरा व्यवहार बदलता है, आहार बदलता है, विहार मना मेरा आसपास का वायुमंडल बदलता है, मेरी नींद बदलती है, तो मेरा कर्मेंद्रिय जीत बनता हूँ, माया जीत बनता हूँ, प्रकृति मना शरीर रूपी प्रकृति मेरे कंट्रोल में आती है, और मैं क्या बन जाता हूँ, विकर्मा जीत बनता हूं, विकर्म होने बंद हो जाते, कर्मातीत बनता हूं, लाइट हाउस माइट हाउस बन के फिर कल्प ऋषि जल में बैठ के बाबा के साथ बिजरू बाप से कमर सारे कल्प से काश देता रहता हूं। तो ये करते करते क्या होता है, मेरे कोई विक्रम बंद कर्मातीत स्थिति बनती जाएगी, विक्रम भस्म होते जाएंगे और पाप कर्म भी भस्म होते जाएंगे और नए संस्कार देवी गुणों के संस्कार सर्वगुण संपन्न बनता जाऊंगा। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, मना ये चार नियम चार मर्यादा उसमें परफेक्ट हो जाऊंगा। अहिंसा परमोधम, काम विकार कामनाएं खत्म हो जाएंगी, लाइट का ताज आ जाएगा और क्रोध लोम अहंकार उनके बाल बच्चे खत्म हो जाएंगे तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ जाएगा। जहां भी रहूंगा जहां भी रहूं ये नहीं कि मुझे सारे विश्व की यात्रा पे जाना, नहीं यहां भी बैठा हूं सारे विश्व की अपने आप सेवा हो रही है, राइट। तो ऐसे होते हैं पाप कर्म भस्म, कैसे होते हैं मन मना भव, कैसे होगा सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि, दिल सच्चा विवेक जागृत, निर्णय शक्ति दिव्य, चित्त शांत एकाग्र आनंदमय, तो चिंतन मन मना भव शुरू हो गया। मन में विचार भावना वृत्ति स्मृति में क्या रिकॉर्ड हो रहा है, ये सातों एनर्जी रिकॉर्ड हो रही है और प्रैक्टिकली मैं जब कर्म कर रहा हूं तो अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, फिर संस्कार बन रहे हैं देवी गुणों के, फिर व्यवहार आहार विहार परिवर्तन हो रहा है, प्रैक्टिकल लोगों को दिखाई दे रहा है, चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष हो रहा है, तब मेरे अंदर कर्मेंद्र जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत और लाइट हाउस माइट हाउस बन के मास्टर बीज बन के बाबा की गोद में सारे कलम से काश अपने आप जा रहा है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, राइट। मैंने टाइम बहुत ले लिया, ओम शांति। चलिए अभी 2-3 मिनट 5 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, सब अलर्ट होके एक्टिव होके बैठना, सीधे होके बैठ जाओ। हाँ जी हाँ, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता हजारों से। बाबा को रोज अपनी बात सारी लिख के बताओ, मैं तो 10-10 बार लिखता था रोज और तीसरे दिन मेरा हार्ट ठीक हो गया और आज तक मैं जिंदा हूं ना, डॉक्टर ने कहा 2 साल ये हो गए मुश्किल से, मैं अभी तक जिंदा ही हूं। चल ठीक है जी, यारों से मतलब शिव बाबा हमारा सबसे बड़ा यार तो पक्का यार तो वही है, बाकी यार तो मिले ना मिले सुने ना सुने, पक्का यार तो वही है ना, खोलना पड़ता हजारों से। चलिए सीधे होके बैठ जाओ, अभी महसूस करना है, मैं 2 मिनट बोलूंगा। मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, मन के माध्यम से विचारों और भावनाओं के माध्यम से इस 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से शरीर की हर कोशिका को पोषित कर रहा हूं, क्योंकि मुझ आत्मा की 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं कम हो गई हैं, डिस्चार्ज हो गई हैं, मन नेगेटिव हो गया है, इसलिए मैं आत्मा अपने परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम सत्य परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस परम पिता परमात्मा शिव से सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से कंबाइन हूं। बाबा ही मेरा संसार है, जुड़ जाओ उस पावर हाउस से, उसी से बुद्धि रूपी तार से मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है और मेरी टीम भी पॉजिटिव होती जा रही है और एनर्जी वो एनर्जी 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं मुझ आत्मा से होती हुई विचार और भावनाओं के माध्यम से बुद्धि मन संस्कार को पोषित करती हुई मस्तिष्क की सभी 16 कोशिकाओं को पोषित करती हुई आंख नाक कान मुख को भी पोषित कर रही है और शरीर की हर कोशिका को पोषित कर रही है। यही बार बार हर 15 मिनट में 10 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए अभ्यास करते जाओ सब, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पाप कर्म भस्म होते जाएंगे, विकर्म भी भस्म होते जाएंगे और क्या बनते अश्री बनते जाएंगे। ओम शांति।
आदरणीय भाई सबका हमें एक हाथ की ताली से बहुत बहुत आभार शुक्रिया, आपने अपनी मीठी रूहानी मुस्कुराहट और धारा प्रवाह वाणी से अति सूक्ष्म विषय को बहुत ही सहजता से सरल शब्दों में हमें स्पष्ट किया है। अगर हमें पता ही नहीं कि पाप कर्म क्या है, विकर्म क्या है, तो हम मुक्ति कैसे पाएंगे। तो पुनः एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया।